لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.
چوتھے پارے کا آغاز کریں گے آیت نمبر 92 سورۃ آل عمران. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی من پسند چیز میں سے کچھ خرچ نہ کر دو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کو خوب جانتا ہے. یہاں سے پارے کا آغاز بھی ہے. پچھلے پارے کی آخری آیت میں کافر کی قیامت کے دن کی حسرت کا تذکرہ تھا کہ زمین بھر سونا بھی دے کر اللہ کے عذابوں سے بچنا چاہے گا تو نہیں بچے گا، کیونکہ وہاں وقت ختم ہو چکا تھا. مومن کو، ایمان والے کو اس بات کا پیغام دیا گیا کہ تم اس دنیا میں اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ چیزیں اللہ کے راستے میں دو گے تو تمہیں آخرت میں اس حسرت کا شکار نہیں ہونا پڑے گا. پارے کی پہلی آیت پارے کے تھیم سے بھی تعلق رکھتی ہے. چوتھا پورا پارا جو ہے اس کا تھیم یا اس کا بنیادی نقطہ جو ہے وہ امت مسلمہ کو درپیش مسائل اور ان کا حل ہے. اس صورت میں ہی مسلمانوں کو وہ پیغام دیا گیا کہ تم دنیا میں بہترین امت ہو اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے. تو جب تک انسان من پسند چیزوں کے گھراؤں میں رہتا ہے تب تک اس کا مزاج ہی اللہ کے راستوں میں جینے کا نہیں. تو اللہ تعالیٰ قربانیاں دلوا کر یہ ٹیسٹ لے رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے کیا چیز چھوڑ سکتا ہے. پسندیدہ چیزوں میں نیند ہو سکتی ہے، جاب ہو سکتی ہے، مال ہو سکتا ہے، سٹیٹس ہو سکتا ہے، وقت ہو سکتا ہے، کیا کچھ نہیں ہے جس میں سے کوئی چیز بھی اگر ہم اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو قبول کر کے بندے کو مزید آگے بڑھنے کی دعوت دیتا ہے. ہم نے یہ آیتیں بہت دفعہ پڑھی، اس وقت ان کو پڑھتے ہوئے پھر اگر ہر بندہ اپنی من پسند چیز کو سوچے اور اپنا جائزہ لے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا پھر اپنی وہ چیز چھوڑ چکی. جتنا چھوڑتے جائیں گے اتنا دل خالی ہوتا جائے گا. اللہ کی بات کو ماننا، اللہ کی رضا میں جینا انسان کے لیے اس دور میں اتنا ہی آسان ہوتا جائے گا. اس کے بعد آیت نمبر 93 اور 94 میں یہود کے دو سوالوں کا جواب ہے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کہ اگر یہ وہی دین ہے جس کی دعوت بنی اسرائیل کے انبیاء کرام نے دی تھی تو پھر اس میں کچھ ایسی چیزیں کیوں آ رہی ہیں جو کہ تورات میں نہیں تھی. انہی میں سے ایک چیز جو تھی وہ اونٹ کے گوشت اور دودھ کے بارے میں تھی. کہتے ہیں کہ یہ مسلمان تو گوشت کھاتے ہیں اونٹ کا اور اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، جبکہ بنی اسرائیل میں تو ایسا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کا ازالہ کیا کہ تورات میں بھی یہ حرام نہیں تھا، یہ تو حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذاتی فعل تھا لن تنالوا البر پہ عمل کرتے ہوئے. ان کو یہ پسند تھا، انہوں نے اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا، تو شریعت نے تو اس کو کبھی بھی منع نہیں کیا. اس لیے اگر آج کوئی ایسی باتیں کر کے اللہ پر جھوٹ بولتا ہے تو وہ ظالم ہے. ہاں، پھر دوسرا ان کا ایک الزام کیا تھا کہ پہلا گھر جو دنیا میں بنا وہ تو بیت المقدس تھا. وہ سوچتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بیت المقدس بنا، یہ سب سے پہلا گھر ہے، اب یہ مسلمان بیت اللہ کی کیوں بات کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں ان اول بیت وودی للناس للذی ببکت مبارکم و ھدی للعالمین میں بتا دیا کہ نہیں، بیت المقدس پہلا نہیں ہے، بیت اللہ پہلا گھر ہے جو اس دنیا کے آغاز میں ہی سب سے پہلے فرشتوں کے ذریعے سے بنوایا گیا. پھر اس گھر کی کچھ خوبیاں بیان ہوئیں کہ اس میں مقام ابراہیم ہے. کس بات کی نشانی ہے وہ؟ کہ اللہ کے راستے میں کھڑے ہونے والوں کے قدموں کو بھی اللہ لکھ لیتا ہے. اللہ ان قدموں کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے جو قدم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. دوسری نشانی وہاں کا امن، ٹینشن فری زون ہونا، وہاں جا کر انسان اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتا ہے. پھر اس کے بعد حج کی استطاعت پہ حج کا فرض ہونا اور حج نہ کرنے کو کفر کہنا 97 آیت میں آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پاس اسباب بھی ہوں پھر بھی وہ نہ حج کرے نہ اس کا ارادہ کرے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کے مرا. یہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ کیا یہودی نصرانی ہونا بری بات ہے؟ نہیں، اصل میں یہ حقیقت ہے کہ یہود اور نصارہ کے دین میں حج نہیں تھا، ان کی شریعت میں حج نہیں تھا، تو گویا کہ وہ ایک ایسا مسلمان ہے جو حج نہیں کر رہا. फिर उसके बाद अहले किताब के कुछ प्रोपेगंडे, पूरा अब अगला हिस्सा हम देखते जाएंगे कि अल्लाह ताला कैसे अहले किताब की साजिशों को बेनकाब करते हुए मुसलमानों को बताते हैं कि देखो ये लोग दिल से इस्लाम के दोस्त नहीं हैं, ये तुम्हें दीन की तरफ आता देकर खुशी नहीं महसूस करते। पहले दर्जे पे तो तक फ़ुरून भी आया तिल्ला, इन्होंने खुद ही अल्लाह की आयतों का इनकार किया, तो अल्लाह पूछते हैं वाय लिमा क्यों किया, तुम छुपाओगे लेकिन वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून, अल्लाह को खूब पता है जो तुम अमल करते हो। फिर उसके बाद अहले किताब के बारे में अल्लाह के नबी से कहलवाया गया कि कुल या अहलुल किताब, कह दीजिए कि अहले किताब क्यों रोकते हो तुम अल्लाह के रास्ते से उस शख्स को जो ईमान लाया। इस्लाम की तरफ आने वालों को रोकते थे, कैसे रोकते थे, तब गुनाही वजह टेढ़पन निकालते थे, वान तुम शुहदा, और इस्लाम को बहुत सख्त मिसाज दीन बताते थे, फंडामेंटलिस्टिक कहते थे इस्लाम वालों को, और इसी तरह कभी कुछ कहते हैं। अल्लाह ताला उनको मना कर रहे हैं कि ऐसे काम ना करो, अल्लाह को खूब पता है जो तुम करते हो। फिर 100 आयत में मुसलमानों को आगाह कर दिया कि ईमान वालो अगर तुम अहले किताब के गिरोह की पैरवी करोगे तो ये तो तुम्हें ईमान लाने के बाद कुफर की तरफ माइल कर देंगे, यानी तुम्हारा दीन ख़त्म कर देंगे, तुम्हारी सोच बदल देंगे, तुम्हारे नज़रियात बदल देंगे, और अब तुम्हें ज़रूरत भी क्या इनकी बात मानने की, वह कई फतक फ़ुरून वन तुम तुतला अलैकुम आयतुल्लाह, अल्लाह की आयतें तुम पे पड़ी जाती हैं, तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल है, कल रसूल दरमियान में था, आज रसूल की बात हमारे पास है, तो लिहाजा अब इनकी किताबों या इनकी बातों को सुनने की बजाय वमैं यातसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिराते मुस्तकीम, जो अल्लाह ताला को मजबूत थाम ले फिर वो सीधे रास्ते पे चल पड़ा। क्या पता चला कि अब कुरान के नज़ूल के बाद अब निजात और कामयाबी अल्लाह की और नबी की बात को मानने में है, दूसरों के इज़्म और दूसरों के नज़रियात को कबूल करने वाले मुसलमान ख़ुद को ज़ाया करेंगे। इसके बाद आयत नंबर 102 से लेकर अगली चंद आयात इंतहाई अहम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून, ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डर जाओ जितना कि उससे डरने का हक़ है, और देखो तुम्हें मौत ना आए मगर इस सूरत में कि मुसलमान हो। मुसलमानों को अल्लाह से उतना डरने की दावत दी जितना कि उससे डरने का हक है। हक़ का तुकाती ही में अगर इंसान गौर कर ले तो अल्लाह से डरने का हक इतना है जिसको बंदा अदा नहीं कर सकता। इसीलिए इस आयत पे सहाबे कराम इतना घबराए कि फिर आयत उतरी कि फत्तकुल्लाह मस्तता तुम, चलो तुम अपनी कोशिश और अपनी इस्तेतात और वसत के मुताबिक ही अल्लाह से डर लो। इशारा दिया गया इधर कि बातें करने से अल्लाह नहीं राज़ी होता, अपनी अमली ज़िंदगी अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक रखोगे तो अल्लाह तुमसे राज़ी होगा। पहली बात, अल्लाह का डर उम्मत मुस्लिमा के मसाइल का हल है। दूसरी चीज़, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीया, अल्लाह की रस्सी को मजबूत थाम लो और तफरकों में ना पड़ो। ये है दूसरा हल आज के मुसलमान उम्मत के मसाइल का। पहली बात, अल्लाह का डर हो, अल्लाह के डर वाली ज़िंदगी हो, मोमिनों मुत्तकियों वाली ज़िंदगी हो, अमली ज़ाती ज़िंदगी में अल्लाह का खौफ हो, झूठ ना बोलो, दूसरों को दुख ना दो, इबादात में अल्लाह का खौफ रखते हुए पूरा करो उसको, और इज्तमाई ज़िंदगी में एक रस्सी को थाम लो, तफरकों में ना पड़ो। और साथ ही बता दिया, याद करो वो नेमत जब तुम दुश्मन थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत डाल दी और तुम उसकी नेमत से भाई भाई हो गए, और तुम तो आग के घड़े के किनारे पर खड़े थे, फिर उसने तुमको इससे बचा लिया। इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें बयान करता है ताकि तुम हिदायत पाओ। यहाँ एतसाम बिहब्लिल्लाह जमिया से क्या मुराद है? हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं कि इससे मुराद क्या है, कुरान पाक, वो क्या है, हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन, कुरान जो है वो अल्लाह की मजबूत रस्सी है, ममदूदुम मिनस समा, जो आसमान की तरफ से लटकाई गई है। जब मुसलमान उस कुरान को पकड़ लेंगे उनके तफरके ख़त्म हो जाएंगे। इस वक्त अगर आप तसव्वुर में लाएं एक आसमान से लटकती हुई टोकरी को, बास्केट को, छोटी सी बास्केट है, अब वो बास्केट जब आसमान से लटकाई गई, जब सारे लोग उस बास्केट तक पहुंचेंगे तो खुद बहुत करीब हो जाएंगे। अब अगर तसव्वुर में लाएं कि उस बास्केट तक पहुंचने की बजाय लंबी रस्सियां और साथ लगाकर नीचे मुख्तलिफ तरफ पे कोई एक बास्केट लटका दी जाए, कोई दूसरी लटका दी जाए, तो हर बंदे की हाथ में जो बास्केट आएगी तो वो उसको पकड़ेगा, तो एक से चार उम्मत बन गई। आज लोग कहते हैं किसी एक इमाम को तो ज़रूर पकड़ो, इमाम की बास्केट वही है जो उस एक बड़ी बास्केट में से चार नीचे लटकी हुई बास्केटें। आपने एक पकड़ ली, दूसरे ने बी पकड़ ली, तीसरे ने सी पकड़ी, चार पकड़ी, फिर आपस में इख्तलाफ, कॉन्ट्राडिक्शन, क्यों रुकते हो, थोड़ा सा ऊपर चलो। हाँ करो क्या कि अल्लाह ही की रस्सी को थोड़ा सा नीचे करो। होता क्या कि जब दीन वाले अल्लाह के दीन को इतना अनअचीवेबल बना के पेश कर दें कि आम लोगों की रीच में नहीं जाती, तो लोग बेचारे नीचे की रस्सियों में अटकते हैं। ज़रूरत क्या उन मसलों में अटकने की जिसके अंदर अटकने के बाद उम्मत के अंदर खुद ही डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ जाए। सारे मसलों को, सारी बास्केटों को फिर ऊपर एक बास्केट पे ले जाओ, रस्सी का हैंडल बड़ा कर दो, वुसअत नज़री पैदा करो, बर्दाश्त पैदा करो, अपने मसले के ख़िलाफ़ बात सुनना समझ लो। क्या होगा, रस्सी तो पकड़ी रखोगे। जब कुरान से लोग कटते हैं तो फ़िरकों में बटते हैं और दुश्मन उनके ऊपर गालिब हो जाते हैं। ये अल्लाह की सुन्नत हर नबी के दौर में रही, बनी इसराइल हों या आज के मुसलमान हों। अल्लाह ताला कहते हैं सबसे बड़ा मसला तो ये है कि मुसलमान उम्मत टूट गई, भीड़ बन गई, छोटे छोटे ग्रोहों में बट गए। तो आप अपने नाम पे राज़ी, मैं अपने नाम पे राज़ी, फला अपने नाम पे राज़ी, तो फिर तो तुम्हारी वहदत टूट जाएगी। इसलिए तुम असल मकसद समझो, तुम पैदा क्यों किए गए। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैर, तुम में तो एक ऐसा गिरोह होना चाहिए जो खैर की तरफ पुकारे। इस खैर के नीचे लाइन खींच के लिखिए, हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं अल खैर से मुराद अल कुरान व सुन्ना। तुम लोग एक ऐसा गिरोह बनो जो कुरान और सुन्नत से जुड़ो। आज खैर नहीं रही आज हमारे दीनी तबकों के पास, क्योंकि कुरान सुन्नत के नीचे ही रोक लेते हैं, फिक के साथ रोक लेते हैं, किसी के नाम के साथ रोक लेते हैं। तो अल खैर क्या है, पूरा दीन, अल खैर पूरा दीन लो, फिर उसके बाद यामुरूना बिलमारूफ वयनहौना निल मुनकर। कुछ ने कहा खैर की बात ही ना करो, सिर्फ मारूफ और मुनकर की बातें करते रहो, अच्छे अच्छे एथिक्स सिखाओ, अखलाक सिखाओ, और दीन की और अकीदे की बात भी ना करो। अल्लाह ने कहा नहीं, पहले ख़ुद खैर पे आओगे तो दूसरों को बुलाओगे, फिर दुनिया से गंदगी दूर करो और उनको खूबियाँ दो, यही लोग फला पाएंगे। और ना हो जाओ उन लोगों की तरह जो तफरकों में गए और उन्होंने इख्तलाफ किया इसके बाद कि उनके पास रोशन नशीने निशानियाँ आ गईं, और यही लोग हैं जिनके लिए बड़ा अजाब है। तफरकाबाजी तभी होती है जब हबलिल्लाह जमीया नहीं होता। ऐसे लोग जिनकी कोशिशों से दीन टुकड़ों में बटा, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को और जिन्होंने एक रस्सी को थामा दो मुख्तलिफ किरदारों की सूरत में पेश करते हैं। कौन सा एक किरदार, यौम तबयद्दु वुजूहुन, कुछ चेहरे उस दिन सफ़ैद होंगे और कुछ स्याह होंगे। सफ़ैद कौन होंगे, इब्ने अब्बास कहते हैं कि सफ़ैद चेहरे वाले होंगे जो दीन से चिपके रहे, और तस्वद्दु वो होंगे जो फ़िरका वारियत को हवा देने लगे। अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे, बस वो लोग जिनके चेहरे स्याह हुए उनसे पूछा जाएगा। इसको हाईलाइट करना चाहें तो कर लें, ये सवाल होगा क़यामत के दिन ऐसे स्याह चेहरे वालों से, क्या तुमने ईमान लाने के बाद कुफर किया था, एक अल्लाह एक रसूल एक किताब को छोड़कर तुम गिरोहों में बट गए, तो अब चखो अजाब को जो कि तुम कुफर करते थे। हाँ इसके बरक्स जिन लोगों के चेहरे रोशन हुए, जिन्होंने ज़िंदगी का मकसद पहचाना, लोगों को बुराइयों से रोका, नेकियों की दावत दी, खैर की दावत दी, अपने हिस्से का काम करने का एहसास उनको खुशी देगा, तो वो फ़फ़ी रहमतिल्लाह, काम करने के बाद जो चेहरे पे इत्मीनान और सुकून है वो ऐसे लोगों के चेहरों पे क़यामत के दिन होगा, और वो लोग उसमें हमेशा रहने वाले हैं। ये हैं अल्लाह की आयतें जो हम आप पर पढ़ते हैं हक के साथ, और अल्लाह का इरादा जुल्म का नहीं है जहान वालों के साथ। कौन अल्लाह, जिसके लिए आसमान और ज़मीन की हर चीज़ है और उसी की तरफ सारे काम लौटाए जाते हैं। पीछे कहा गया था वल तकुन, होनी चाहिए, अब दावा कर दिया हो तुम, कुन तुम खैरा उम्मतिन उख्रिजत लिन्नास, हो तुम करेंगे, तो मुराद क्या है, क़यामत तक के मुसलमान बेहतरीन उम्मत हैं। लेकिन शर्त क्या है, तामुरूना बिलमारूफ और तनहौना अनिल मुनकर व तूमिनूना बिल्लाह ही होता रहे। एक तफसीर तो यही है कि जब मुसलमान ये सारे काम करते जाएंगे वो हमेशा बेहतर हैं। दूसरी तफसीर है कुन तुम, थे तुम, तो इशारा है सहाबा कराम की तरफ, ओ मुसलमानों तुम बहुत अच्छे थे, शर्त क्या थी, जब तक तुम ये काम करते रहे। आज के मुसलमान को देखकर खैरा उम्मत तो नहीं आता जहन में, तो कुन तुम थे, हाँ जब तामरून छोड़ा बिलमारूफ और तनहौना अनिल मुनकर छोड़ा तूमिनूना बिल्ला छोड़ा, तो मुसलमान खैरा उम्मत तो नहीं रहे, एक भीड़ बन गए। वलो आमना अहलुल किताब लकाना खैरल लहुम, अहले किताब को भी कल यही मनसब दिया गया था कि दुनिया में अल्लाह की बात पहुँचाओ, उन्होंने नहीं माना, बिगड़ गए, हट गए। अब अगर तुम भी ऐसे करोगे तुम भी हट जाओगे। कुछ उनमें से मोमिन हैं, अक्सर फासिक हैं। आज मुसलमान पे भी यही जुमला है, चंद गिनती के नाम ईमान वाले بڑے بڑے ان کو اللہ تعالیٰ نے درجے دیے لیکن اکثریت کا حال ہم دیکھ ہی رہے ہیں، اور کہا کہ ڈر کیا تمہیں، فرقہ واریت یا مسلک پرستی میں ایک پیچھے ہاتھ جو ہوتا ہے وہ دوسروں کا ڈر ہوتا ہے، غیر کیا کریں گے، نان مسلم ہمارا کیا کریں گے، تو اللہ کریں نہیں یہ در روکم اللہ ازن، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، چند باتیں ہی کریں گے نا، الزام لگا دیں گے، ٹیررسٹ کہہ دیں گے، تمہارے نبی کے کارٹون بنائیں گے، تو کیا ہوا، اصل ان کی حالت کیا کہ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، بزدل ہیں، پھر کبھی بھی مدد نہ پائیں گے، دوری بت علیہم وذلائنما سکفو، ان پہ تو ہمیشہ ذلت پڑی جہاں بھی یہ گئے، ہر دور میں، بخت نصر کا دور، ٹیٹس کا دور، اور کبھی رومنز کے ہاتھوں پیٹے، ان کی بنی اسرائیلیوں کی تو ایک ہی سنت ہے کہ یہ ہر دور میں دھتکارے ہی گئے، ہاں ان کی عذاب سے اور پکڑ سے بچنے کی دو ہی صورتیں ہیں، نمبر ایک اللہ بحبل من اللہ، اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، یہاں نیچے اشارہ لکھ لیں کہ اسلام قبول کر لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آ جائیں اور دین کو تھام لیں، نہیں تو آج جو دوسری صورت ہمیں دنیا کے نقشے پہ دکھتی ہے وہ حبل من الناس، یا پھر لوگوں کی پناہ لے لیں، بڑی طاقتوں کے پیچھے چھپ کے ایک چھوٹی سی ریاست بنا کے بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائیں، ورنہ ان کے نصیب میں تو ذلت اور مسکنت ہے، وباؤ بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، اللہ کا غضب ان پر ٹوٹا اور ان پر مسکینی آئی، کیوں، وجہ کیا ہے، کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ ان کا پہلا جرم تھا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار تھا، قول سے، فعل سے، عمل سے، دوسرا جرم یقتلون الانبیاء بغیر حق، ناحق انبیاء کرام کو قتل کر دیتے تھے، تیسرا جرم ذالک بما اسف، نافرمانیاں تھیں ان میں، اور چوتھا ان کا گناہ کانو یا تدون، یہ زیادتیاں کرتے تھے، آج تاریخ پہ دیکھ لیں نظر ڈال کر مسلمانوں میں اس سے ملتی جلتی چاروں ہی برائیاں دکھتی ہیں، انبیاء آج نہیں ہے تو اس میں علماء حق کا قتل لکھ لیجئے، تو آج مسلمان پہ بھی جو مسکنت اور ضربت ہے اس کی وجہ ہمیں یہاں دکھ رہی ہے، لیکن سارے ایسے نہیں، لیس سوا من اہل الکتاب، اہل کتاب سارے برے نہیں ہوتے، ان میں بھی کچھ لوگ ہیں جو رات کی گھڑیوں میں کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتے ہیں، تو یہ لوگ صالح ہیں، اور ایسے لوگ جو کسی دوسرے دین سے پلٹ کر ادھر آتے ہیں تو اگر وہ کوئی بھی اچھا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمل ضائع نہ کرے گا، کیونکہ اللہ متقیوں کے اجر ضائع نہیں کرتا، اللہ پرجرس نہیں ہے کہ کسی کو پہلے کسی دین پہ ہونے کی وجہ سے دھتکار دے، عبداللہ بن سلام جیسے لوگ جو اسلام قبول کر کے اللہ کے نبی کی مائیت میں آ گئے، اللہ نے ان کی پچھلی نیکیوں کو بھی قبول کیا، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ہرگز ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کے کام نہ آئیں گی اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، یہ لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور باقی رہ گئی بات دنیا میں ان کی پمپ اینڈ شو، تو یاد رکھو کہ جو کچھ یہ دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایک تیز خاندی کے دن میں خرچ کرنے والی چیز ہے، یعنی ایسی ہوا جس میں پالا پڑے، یعنی جو کھڑی فصلوں کو تباہ کر دے، ایک قوم کی کھیتی کو پہنچی جس نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اس کھیتی کو ہوا نے ہلاک کر دیا، مطلب یہ کہ دنیا کے ان کے ظاہری خرچ اخراجات کل اللہ کے عذابوں سے ان کو نہیں بچائیں گے، اور یہ اللہ کا ان پر کوئی ظلم نہیں بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، پھر مسلمانوں کو کچھ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، کیئرفل، ایکسٹرا کیئرفل ہو جاؤ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مت دلی دوستیاں پکڑو اپنے لوگوں کے سوا، یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کے غیر مسلموں سے دلی دوستی نہ کرو ورنہ یہ تمہاری تباہی میں کمی نہ کریں گے، اور یہ تو چاہتے ہیں، ان کو تو خوشی ہوتی ہے اس چیز سے جو ماں آنے تم جو تمہیں دکھ دے، تم پہ آفت آئے، مصیبت آئے، کوئی زلزلہ طوفان ہے، یہ خوشی خوشی مدد کرتے ہیں، ان کو خوشی ہوتی ہے، اور ان کا بغض تو ان کے چہروں سے اجاگر ہے، اور تمہیں تو ان کے منہ کی باتیں دکھی کرتی ہیں، ان کے تو دلوں میں جو ہے وہ تو اس سے بھی بڑا ہے، اور ہم نے بیان کر دی تمہارے لیے نشانیاں تاکہ تم عقل رکھو، اور اصل بات جو مسلمانوں کے منہ پہ ایک تماچا لگتی ہے کیا کہ ہو تم وہ لوگ، تم تو ان سے بڑی محبت کرتے ہو لیکن یہ تم سے نہیں کرتے، تم ان کی کرسمس مناتے ہو یہ تمہاری عید نہیں مناتے، تم ان کے ویلنٹائن مناتے ہو یہ تمہارے تہوار نہیں مناتے، تم سالگرہ مناتے ہو یہ تمہارے عقیقے نہیں مناتے، تم ان کے پیچھے بھاگتے ہو یہ تو نہیں بھاگتے تمہارے پیچھے، و تم مینون بالکتاب کلی ہی، اور تم ساری کتاب پر ایمان لاتے ہو، اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، منہ سے بڑے ہائے بائے کرتے ہیں لیکن جب تنہا ہوتے ہیں تو تمہاری ترقیوں کو دیکھ کر غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں، تم کہو ان کو کہ مر جاؤ اپنے غصے کے ساتھ، جو اسلام کی ترقی دیکھ کر، دین والوں کی ترقی دیکھ کر تمہیں غصہ آتا ہے टेंशन में पड़ के ही तुम खुद मर जाओगे और अल्लाह तुम्हारे सीने की बातों को जानता है। हाँ मुसलमानों, जब तुम्हें कोई खैर मिलती है तो इनको बहुत दुख होता है। हाँ जब तुम्हें कोई बुराई पहुँचती है तो ये खुश होते हैं। अब क्या करें, इतना इनके दिल में ग्रज है, मारो इनको। नहीं, ये है दुश्मनों से बचने के तरीके। दुश्मनों की साजिशें तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। शर्त क्या है, वह इन तस्वीरों। नंबर एक, तुम सब्र करो। यहाँ सब्र से मुराद दुख बीमारी का सब्र नहीं, दुनिया से सब्र करो। दुनिया थोड़ी रखो, मींस को थोड़ा रखते हुए सारी एफर्ट्स अल्लाह के रास्तों में लगाओ। वतत्तकू, तकवा अख्तियार करो, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह की मर्ज़ी को ज़िंदगी में लाओ। ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, इनका दरर तुम्हें कुछ भी तकलीफ़ ना देगा। और बेशक अल्लाह ताला जो वो करते हैं उसको खूब जानने वाला है। यहाँ तक अल्लाह ताला ने ये बात करके बता दिया कि दुश्मन किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, इंसान खुद अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारता है। इससे अगला हिस्सा 121 और अगली काफ़ी सारी आयात जो हैं ये ग़ज़वे उहद से मुतल्लिक़ है। वह इस गदौत मिन अहलिक तुबव्वियुल्मुमिनीन मक़ाइद लिल्क़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। और जब सुबह के वक्त आप अपने घर वालों से निकले और आप मोमिनों की लड़ाई के लिए जगह हमवार कर रहे थे, और अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला था। आयत नंबर 221 से लेकर अगले तकरीबन 2-3 रुकू और फिर बीच में थोड़ी सी बातें होने के बाद मज़ीद अगली आयतों में ग़ज़वे उहद के हालात हैं। हमने सूरत आले इमरान के आगाज़ में ये बात देखी थी कि सूरत आले इमरान ग़ज़वे बदर से लेकर ओहद के दरमियानी दौर में नाजिल हुई थी। ग़ज़वे बदर में मुसलमानों को बहुत तारीख साज किस्म की फतह हासिल हुई थी, जिसकी वजह से दुश्मनों के दिलों पर आपका रोब तारी हो गया था। और कई ऐसे लोग जो थे वो इस्लाम में दाखिल हो गए जिनको होना नहीं था, मजबूरन होना पड़ा, जैसे कि अब्दुल्ला बिन उबई भी उन्हीं में था। मक्का वालों को अजीम किस्म की शिकस्त जब हुई, उसका बदला लेने के लिए अगले साल वो नई तैयारी के साथ दोबारा फ़ौजें लेकर मुसलमानों के सर पे आए। ओहद के पहाड़ के दामन में एक जंग हुई जिसको ग़ज़वे ओहद के नाम से पुकारा जाता है। हम यहाँ उसके छोटे छोटे वाक़यात तो नहीं देखेंगे क्योंकि वो हम देख चुके, कुरान की आयतों से भी दिखता है। लेकिन यहाँ से असल में अल्लाह ताला मुसलमानों को ये बताता है कि नबी की मौजूदगी में भी उम्मत की फतह शिकस्त में बदल सकती है। वजह क्या है कि जब उम्मत नबी की भी बात ना मानेगी तो उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। बुनियादी थीम ग़ज़वे उहद का यही है कि फतह शिकस्त में कब बदलती है, अच्छे लीडर होने के बावजूद भी कब, जब लोग बात नहीं मानते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सुबह अपने घर वालों को छोड़कर अल्लाह के लिए निकले। इस बात की दलील है कि प्यारों को छोड़कर भी अल्लाह के रास्तों में निकलना पड़े तो इंसान निकले। तुबव्वियुल मोमिनीन से पता चला कि धाड़सानी काम शुरू नहीं करना, पहले सफ़बंदी करनी है, पहले तैयारियां, प्लानिंग, फिर उसके बाद काम। आयत नंबर 122 और 123 में अल्लाह ताला ने दो गिरोहों का तस्करा किया कि जो अब्दुल्ला बिन उबई के साथ 300 लोगों को निकलता देखकर ज़रा हिल गए। थे ईमान वाले तो अल्लाह ने बचा लिया। एक ईंट निकलती है ना तो उसके साथ की चार ईंटें कच्ची हो जाती हैं जो उसके चारों तरफ लगी होती हैं। जब अब्दुल्ला बिन उबई लोगों को लेके निकला, क्योंकि निफाक था और निफाक के साथ ज़्यादा दूर बंदा चल नहीं सकता, शुरू में साथ मिल भी जाए तो बीच में साथ छूटने लगता है, उसके निकलने को देखकर दो गिरोहों का दिल चाहा कि शायद हम भी कहीं मारे ही ना जाएं। ये अक्लमंद है जिन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, लेकिन अंदर के चौकीदार यानी तकवा ने उनका साथ दिया, पलट आए। अल्लाह ने उनकी तारीफ़ करके कहा वल्लाहु वलीयुहुमा। फ़ख्र किया करते थे कि ठीक है हमारी लग्जिश का जिक्र है कुरान में, लेकिन अल्लाह ने आखिर में कह दिया कि अल्लाह उन दोनों का दोस्त था और अल्लाह ही पर तवक्कुल करना चाहिए मोमिनों को। क्या पता चला कि दीन के कामों में इंसान लुढ़क सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। वायरस तो अच्छे भले कंप्यूटर्स में आ जाते हैं, लेकिन मोमिन के अंदर वायरस रहता नहीं है, वो निकल जाता है। अल्लाह ताला ने इनको बचा लिया और ये फिर आखिरी दम तक दीन पे रहे। फिर मोमिनों को बड़ा मुश्किल लगा कि आज क्या हाल होंगे, ग़ज़वे उहद है, किस तरह ये काम होगा। तो कहा कोई बात नहीं, और बेशक अल्लाह तुम्हारी मदद कर चुका बदर के मैदान में जबकि तुम और भी कमज़ोर थे। अब्दुल्ला बिन उबई 300 लोगों को साथ ले गया था और 700 पीछे थे, तो गज़वे बदर में तो कुल 313 थे, अब उससे तो ज़्यादा हो। इसलिए अल्लाह ताला बता रहे हैं कि फ़तह शिकस्त लोगों की कसरत और किल्लत से नहीं होती, असल मदद अल्लाह की तरफ से है। तकवा पैदा कर लो ताकि तुम अल्लाह की मदद के मुस्तहिक हो जाओ। इसके बाद अल्लाह ताला उस मंज़र को सामने लाते हैं कि जो गज़वे उहद के शुरू में था, जब तुम कह रहे थे मोमिनों को कि क्या काफ़ी नहीं तुमको, यानी क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारा रब तुमको मदद दे 3,000 फरिश्तों के साथ जो उतारे गए हों, बल्कि अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो वो तुम पर जोश के साथ आएंगे, और ये अल्लाह की तरफ से मदद 5,000 की भी, वो फरिश्ते जो कि निशानी लगे हुए हैं। कितने फरिश्ते उतरे? 3,000 के 5, ये बहस ही नहीं है। मदद का ताल्लुक़ ईमान के साथ है, जितना गहरा ईमान होगा उतनी अल्लाह की मदद ज़्यादा आएगी। जिस बंदे को अल्लाह पर ईमान है ना, वही आजमाए वरना ना आजमाए। इब्राहिम आग में कूद पड़े, आग ठंडी हो गई, शायद मैं और आप आज कूदें तो आग जला के राख कर देगी, क्योंकि जो हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, फिर आग ठंडी होती है। हमारी ज़िंदगी में मोड़ मोड़ पे हमारे साथ यही हो रहा है, हम समझ नहीं पाते। हम कभी परेशान होते हैं, कभी हम बीमार होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम रोक लिए जाते हैं, कभी हम किसी मसले का शिकार होते हैं दीन दुनिया में। असल में राह निजात ईमान और तकवा, जितना अल्लाह के इशारों को समझेंगे उतनी ही अल्लाह ताला की तरफ से मदद ज़्यादा आएगी। और बाकी रह गए फरिश्ते, तो ये तो सिर्फ़ अमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा, ये तो खुशखबरी के लिए, बस दिल इत्मीनान में आ जाएं तुम्हारे। असल मदद तो अल्लाह की तरफ से है, वो गालिब और हकीम है। बात लोग कहते हैं गज़वे बदर में फरिश्तों ने मदद की तब जीते, नहीं, गलत जुमला है, निकाल दें इसको। फरिश्तों की मदद से कुछ नहीं होता। अल्लाह ने अगर दुनिया में अपना निज़ाम फरिश्तों से ही नाफिस कराना होता तो आदम को बनाने की और फरिश्तों से सजदा कराने की क्या ज़रूरत थी। अल्लाह चाहता है कि इस दुनिया में मेरा निज़ाम इंसान कायम करें। अल्लाह इंसानों को दिखाने के लिए, ढारस बंधाने के लिए फरिश्तों को उतरवाता है, लेकिन असल मदद अल्लाह की तरफ से होती है। और ये सब कुछ क्यों हुआ? ताकि काफिरों का ज़ोर टूट जाए और वो खासरीन होकर नामुराद होकर लौटें। यानी ऐसी जंगें कभी कभार जो होती हैं वो क्यों होती हैं? ताकि कट जाए किनारा उन लोगों का जिन्होंने कुफर किया। अल्लाह खरे और खोटे को जंगों में ही तो फ़र्क करता है। आम हालात में सब घुले मिले रहते हैं, मुश्किल हालात जब हमारी ज़िंदगी में आते हैं ना, तो वो हालात ऐसे होते हैं कि जो हमारी कीमत अल्लाह के सामने बढ़ाते या कम करते हैं। गज़वे उहद में नबी सल्लम का दांत शहीद हो गया, हौद की कड़ियाँ घुसी, खून निकल आया, तकलीफ़ और चोट में आपने कह दिया कि अल्लाह इस कौम को कैसे हिदायत देगा जिन्होंने अपनी नबी को ज़ख्मी कर दिया। ये बात थी दिल की, अल्लाह को पसंद ना आई, कहा लैसा लका मिन अल अम्र शैयुन, ए नबी आपके इख्तियार में नहीं है कोई अमर कि इनको हिदायत मिलनी है कि नहीं मिलनी, अल्लाह उनको माफ़ करे या अजाब दे, ये अल्लाह का फ़ैसला। आज कहते हैं जो अल्लाह चाहे और मोहम्मद चाहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आयत नोट कर लें उसकी दलील में कि जब अल्लाह चाहेगा तभी काम होगा। नबी अपने दुश्मनों के बारे में भी ये नहीं कह सकता कि इनको हिदायत नहीं मिलनी, मैं और आप किसी के लिए कैसे कह सकते हैं कि फ़लाँ वो तो बड़ा बहकाव है उसको हिदायत नहीं मिलनी, ऐसा नहीं होता। जब अल्लाह चाहता है तभी कोई काम होता है। और अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमान और ज़मीन की सारी चीज़ें अल्लाह ही के हाथ में हैं, और वो बख्शने वाला और मेहरबान भी है, जिसको चाहे बख्शे जिसको चाहे माफ़ कर दे। मुराद ये है कि सारे फ़ैसले सारे इख्तियार उसके हैं, तुम अपने ऊपर किसी बात को ना लो। ग़ज़वे उहद की शिकस्त का एक बहुत बड़ी वजह माल की मोहब्बत थी। कुछ सहाबा कराम माल गनीमत देख कर अपनी जगह पर कायम ना रह सके, इसीलिए लोहा गर्म देख कर चोट मारी गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अदाफ़ मुदाफ़ा की सूरत में, कि दुगने का दुगना सूद करके ना खाओ, और डर जो अल्लाह से ताकि तुम फला पाओ। क्या पता चला कि कल की उहद हो या आज मोमिनों के ईमान वालों के हालात हों। जितना ईमान वाले या मुसलमान ख़ुद को अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहने के बावजूद माल के पीछे भागते रहेंगे ना, उतना ही इनसे फतह दूर होते हुए शिकस्त आती जाएगी। दुश्मन ऐसी कौमों पे गालिब आ जाते हैं जो कौमें माल की मोहब्बत का शिकार होती हैं। शरीयत ने इसको वहन कहा, और वहन वीकनेस को कहते हैं, कमज़ोरी। जैसे आप बीमार हो तो कहते हैं मैं वीकनेस फील कर रही हूँ। अल्लाह हुब दुनिया व कराहियतुल मौत को वहन कहता है। जितनी दुनिया में जीने की और पाँव पसारने की आरजू बढ़ती जाए और मौत से खौफ आता रहे, उतना इंसान अंदर से कमज़ोर हो जाता है। कहा इसको छोड़ दो, अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में भी इज्जत दे देगा, दुनिया में भी फतह दे देगा, और अगर अल्लाह के कहने पे भी सूद नहीं छोड़ते तो वत्तकुन्नार अल्लती उद्दत लिल काफिरीन, उस आग से डर जो जो अल्लाह ने काफिरों के लिए तैयार की। फिर शिकस्त कैसे फतह में बदले? उसका असूल वातीउल्लाह वर रसूल अलअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह रसूल की इताअत करो। नंबर एक, दोनों को एक कर लें या दो कर लें, फलाह मिल जाएगी, कामयाब हो जाओगे, तुम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाओगे। दूसरी चीज़, बस सारी विला मग़फ़िरत मिन रब्बिकुम व जन्नत अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु, और दौड़ो भागो गुनाहों की बख्शिश की तरफ और उन जन्नतों की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों ज़मीन जितनी है और जो मुत्तकीन के लिए तैयार की गई। भागो, नेकियाँ करो, अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगो और उस जन्नत को पाने की तलब रखो जिसका एक कोड़ा रखने की जगह दुनिया और दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा कीमती है। ऐसी कौमें अल्लाह की मदद पाती हैं। अगला अमल जिससे फतह आएगी, अल्लज़ीन युन्फिकून फिस्सर्राय वद्दर्रा, तंग दस्ती में भी खर्च करो और खुश दस्ती में भी, यानी हाथ खुला है तो भी अल्लाह के रास्तों में दो और हाथ तंग है तो भी अल्लाह के रास्तों में दो। जो कौमें अल्लाह के रास्ते में देने से पीछे हट जाती हैं, अल्लाह उस कौम पर दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है। और जब तक बंदा किसी चीज़ पे खर्च नहीं करता, उसकी वैल्यू नहीं पहचानता, उसकी कदर ही नहीं हो सकती। इसीलिए अल्लाह के रास्तों में खर्च करके अल्लाह ताला बंदे को ऑनर देता है कि तुम इस चीज़ को अपने लिए एक ऑनर समझो कि अल्लाह ने तुम्हारे माल को अपने रास्ते में खर्च करवाया। फिर उसके बाद गुस्से पर काबू पाना, मुसलमानों को बताया अग्रेसिव ना बनो, गुस्सा ना करो, आपस में भी ना लड़ो मरो, और दूसरों के साथ भी ऐसे मामलात ना करो कि जो तुम्हारी साख को मुतासिर करे। गुस्सा आए तो वो गुस्सा अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करो, ना कि लोगों पर। और अगली बात, वलाफीन आनिन नास, लोगों को माफ़ कर दो, दरगुजर कर दो। और अगली बात, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह मुहसिनों को पसंद करता है। ऐसे लोग जो अल्लाह की मदद के मुस्तहिक होते हैं, उनमें कुछ और खूबियाँ भी हैं। क्या? इज़ा फ़ालू फ़ाखिशतन, जब कभी इनसे फुखश काम हो जाए, हो सकता है नफ्स के गलबे से हो सकता है, लेकिन मोमिन ठहर नहीं सकता उस पर। औ ज़लमू अनफुसहुम, या फिर अपने नफ्स पे जुल्म करें, यानी शिर्क या गुनाह करके फौरन क्या करें, ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र करें, होश में आ जाएं, अल्लाह को याद करें, और साथ ही फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगें तो अल्लाह माफ़ करता है। क्योंकि वह मई यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्लल्लाह, अल्लाह नहीं माफ़ करेगा गुनाहों को तो और कौन करेगा। हाँ, मसला किन का है जो गुनाह करके इसरार करते हैं? वलम युसिरु अला मा फ़अलू, उस पर इसरार नहीं करते जो करते थे बुरे काम, और वो जानते हैं। जो ये सारे काम करें उनकी जज़ा मग़फ़रत है उनके रब की तरफ से, और वो जन्नतें जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और अच्छा अजर है अमल करने वालों का। ये वाक़या सुनाकर बीच में कहा गया कि ये है पिछले लोगों की कहानी, बस तुम ज़मीन में फिरो और देखो कि झुठलाने वालों का अंजाम कैसे हुआ। नेशंस को देखो कि उनको अल्लाह ताला ने कैसे नीस्तो नाबूद कर दिया। और इस कुरान के बारे में कहा, हाज़ा बयानुलिन्नासि व हुदम व मौइज़तुल लिलमुत्तकीन, ये है बयान और हिदायत और मौइज़ा मुत्तकियों के लिए। कुरान हुदन कब बनता है? जब इसको समझ के पढ़ते हैं। मौइज़ा कब बनता है? जब इसको समझने और अमल की नीयत से पढ़ते हैं। और तकवा वाले दिल को ही कुरान हुदन और मौइज़ा लगता है, बाकी तो इससे ऊपर ही गुजर जाते हैं। वला तहिनु वला तहज़नु, शिकस्त कब आती है कौमों में? जब उनमें वहन आ जाता है, ऊपर बात हो गई। हुब्बे दुनिया व कराहियतिल मौत, और वला तहज़नु हुज़न, गम मायूसी डिप्रेशन, हम कुछ नहीं कर सकते, हाय मुसलमान पिस गए, हाय मुसलमान कुछ नहीं कर सकते, ऐसी सोचें। यही चीज़ें कौमों को नीस्तो नाबूद कर देती हैं। अल्लाह हिम्मत दिला रहे हैं, मोरल बुलंद कर रहे हैं, वन तुम लालून, तुम ही बुलंद हो, इन कुन तुम मोमिनीन, बस ईमान पूरा कर लो, ईमान बढ़ाओ। ऐसे लगता है किसी बीमार को हिम्मत दिलाती है, माउठ उठो, चलो शाबाश, मुँह धो लो, कंघी कर लो, तुम्हें हिम्मत आ जाएगी, कोशिश कर लो। ईमान होता है तो इंसान बुलंदियों पे खुद ही पहुँच जाता है। बाकी रह गई, औहद में 70 मारेंगे, कोई बात नहीं, यमसस्कुम करहुन, तुम्हें अगर ज़ख्म लगा, चोट लगी, तो इससे पहले पिछले साल इनको भी तो लगी थी बदर के मैदान में। और तिल कलैया मुनुदा विलुहा बैनन्नास, ये दिन है जो हम लोगों के बीच में घुमाते हैं, कभी की रातें लंबी, कभी के दिन लंबे, वक्त एक सा नहीं रहता। आज दीवार के पीछे क्या पड़ा हुआ हमें नहीं पता, कल हमारा क्या हाल होने वाला है हमें नहीं पता। इसलिए कोई नेमत मिले तो इतराओ ना, कोई नहीं मिली तो घबराओ नहीं। अल्लाह ताला को पता है कि कौन ईमान वाला है और कौन तुम में से गवाह है, और वो ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। अल्लाह जंगे क्यों लाता है? ताकि ईमान वालों को ख़ास कर दे, उनके ईमान को और खड़ा कर दे, और काफिरों को मिटा के रख दे। پھر ان لوگوں کی خوش فہمیاں دور کی گئیں جو صرف خوابوں کی اور خیالوں کی جنت چاہتے ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے, حالانکہ نہیں تم میں سے اللہ نے محنت کرنے والوں کو پہچانا اور ابھی اس نے نہیں دیکھے صبر والے. پتہ کیا چلا, صبر اور جہاد کے بغیر جنت نہیں ملے گی, اور جہاد کا تعلق انسان کے اپنے نفس سے شروع ہوتا ہے اور تلوار تک پہنچتا ہے, بیچ میں قلم آتا ہے, اور صبر ان ساری چیزوں کے لیے ضروری ہے. آج کہاں گئے وہ تمہارے دعوے, کل تک تو تم موت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے, آج تم نے اس سے ملاقات کر لی اور تم آج اس کو دیکھ رہے ہو. اور رہ گئے اللہ کے نبی, اب اگلی آیتیں تب کی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل چکی تھی جو جھوٹی خبر تھی. کہا کیا ہوا, وما محمد الا رسول, اور نہیں تھے محمد مگر ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے کئی رسول گزر گئے, کہ اگر وہ مر جائیں یا مار دیے جائیں تو تم پلٹ جاؤ گے اپنے دین سے. چلو کوئی بات نہیں, جو کوئی پلٹتا اپنے دین سے اپنی ایڑیوں سے تو اللہ کا تو وہ کچھ نہیں بگاڑے گا. ہن قریب شکر گزاروں کو, قدردانوں کو اللہ بہت دے گا. پتہ کیا چلا کہ نبی کے جاتے ہی دین نہیں چلا گیا, اللہ کا نبی چلا گیا, اللہ تو موجود ہے. اور جو لوگ موت کے ڈر سے میدان جنگ میں نہیں آتے یا اللہ کے راستوں میں نہیں آتے تو اللہ ان کو تسلی دے رہا ہے کہ کیا ہوا, کوئی نفس اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا, لکھی ہوئی بات موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی موت کا وقت رکھا ہوا ہے, وہ آئے گا تو ہی مرے گا. ہاں جو دنیا کا ثواب چاہے گا اس کو دنیا دیں گے, اور جو آخرت چاہے گا اس کو اس میں سے بھی دیں گے, اور قدر دانوں کو ہم بہترین جزا دیں گے. پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی تعریف کی گئی کہ غزوہ بدر ہو یا احد, نبی اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, اور نبی کتنا ہی زیادہ ایمبیشیس کیوں نہ ہو, اس کے پاس کتنی ہی زیادہ ایمان کی بلندی کیوں نہ ہو, جب تک ساتھ نہ ملے ربیین کا تب تک بات نہیں بنتی. وَقَيِّم مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, اللہ کہتے ہیں کتنے نبی ایسے گزرے کہ لڑائی کی ان کے ساتھ اللہ والوں نے. ربی یہاں اللہ کے نبیوں کے ساتھیوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے اندر کتنا ربانیت تھی, کتنا رب کو پہچانتے تھے. کہ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستوں میں کوئی مشکل آئی وہ نہیں کمزور پڑے. وما داؤفو, کوئی زوف نہیں دکھایا. ومستکانو, نہ گڑ گڑائے. اور واللہ یحب الصابرین, جتنی بڑی مشکل آتی تھی اتنا صبر کرتے تھے, اور نہیں تھی ان کی بات اس کے سوا, جب بھی کوئی مشکل آتی تو ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین, چار چیزیں, بخشش اپنے گناہوں کی, زیادتیاں اپنے کاموں پہ, قدموں کا جماؤ, اور کافروں کے مقابلے میں فتح مانگتے تھے. جیسے اللہ کے نبیوں کو ایسے لوگ ملے تو اللہ نے اسی کی وجہ سے ان کو دنیا اور آخرت کا اجر بھی دے دیا. اور واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے. اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کی سرگرمیوں سے بھی آگاہ کر دیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم کافروں کے گروہ کا کہنا مان لو گے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے اور تم خاسرین ہو جاؤ گے. مت مانو ان کی باتیں, مشرقین کی سازشیں جنگوں میں ساتھ ساتھ چلتی تھیں, وہ خریدتے تھے لوگوں کو, بیچتے تھے ان کے ہاتھوں میں کچھ لوگ ایمان, تو ایمان والوں کو کہا تم نے ایسا کرنا, بلکہ اللہ تمہارا دوست ہے اور وہی بہترین مدد کرنے والا ہے. اور ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے کس وجہ سے, بیمار شرکو, کیا پتہ چلا کہ شرک کی وجہ سے دل میں روب پڑ جاتا ہے. ایمان بندے کو امن دیتا ہے تو شرک بندے کو بے چین کرتا ہے, اور شرک بھی وہ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. وماواہم النار, اور ظالموں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اس کے بعد آیت نمبر 152 سے لے کر آیت نمبر 155 تک تقریباً غزوہ احد کا وہ وقت ہے جو ابتدائی دور تھا, ابھی بھگدڑ نہیں مچی تھی, ابھی مسلمان اسی چیز پہ جمے ہوئے تھے. تو اللہ کہتے ہیں دیکھو جب تم لڑ رہے تھے تو وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ, اللہ نے اپنے وعدے سچے کیے جب تم ان کو کاٹ رہے تھے اس کے حکم سے. پھر جب تم نے بزدلی کی اور تم جھگڑ پڑے کاموں میں, آپس میں تنازع کر دیا اور نافرمانی کر لی, ہاں کب, مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ, دولت دکھ گئی تھی نا, فتح مل گئی تھی نا اس کو, دے کے لڑنے لگ گئے, ہلاک ہوئے, کوئی بات نہیں, دو گروہوں میں بٹ کے کچھ دنیا کو چاہتا ہے کوئی آخرت کو, لیکن اللہ نے وہ وقت بھی ٹال ہی دیا. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم, اللہ نے پھر وہ وقت تم سے پھیرا, پھر آزمائش ہے, ایک مشکل کے بعد پھر آزمائش, پھر تم سے درگزر کیا, اور اللہ صاحب فضل ہے ایمان والوں پر. 152 میں وہ آیت تھی جس میں بھگدڑ مچنے سے پہلے کا وقت تھا, 153 से अगली आयात में भगदड़ मचने के बाद की बात है कि जब तुम चढ़ रहे थे और मुड़के ना देखते थे किसी को और रसूल तुमको पीछे से पुकार रहा था, यानी रसूल की नहीं तुमने सुनी, फिर तुम्हें गम पर गम मिला ताकि तुम उस पर गम ना करो जो तुमसे चूक गया, और जो तुमको मिला उस पर गम ना करो, बेशक अल्लाह खूब जानने वाला और को जो तुम अमल करते हो। क्या पता चला कि ये फतह और शिकस्त तो बीच की चीज़ें हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। असल तुम आजमाइश में थे, पहले खैर हो रही थी उसमें तुम पीछे रहे, फिर शिकस्त हुई तो उसमें पीछे रहे। अगर सारी बातों को हम देखें तो पता ये चलता है कि जब अल्लाह ताला की बात नहीं मानी जाती तो फिर अल्लाह ताला बंदे को इस तरह के फतह और शिकस्त से दो चार करता है कि उसको पता भी नहीं चलता। हम इन आयात को सिर्फ इस तरह से पढ़ रहे हैं, अगर देखें तो गौर से इसमें आज के मुसलमानों की भी कहानी है। फतह या शिकस्त दो आईने हैं किस चीज़ के मुसलमान कर क्या रहे। अल्लाह की मदद ईमान वाले के साथ है, लफ्ज़ मुसलमान नाम से नहीं है। तो हम सब इस तनाजर से आज के हालात को भी अगर परखें तो हमें इसमें बहुत रहनुमाई मिलती है। आगे देखेंगे 154 आयत, ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية। यहाँ से غزوہ احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا وہ معاملہ پیش کیا جا رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے چوٹ کھانے کے بعد بھگدڑ مچنے کے بعد دوبارہ ان کو مطمئن کر دیا تھا۔ اور جنگیں ہوتی ہی اس چیز کا نام ہے، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا والی کیفیت، کبھی صفحیں بکھری بھی دکھتی ہیں تو کبھی صفحیں بنی بھی دکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس غم کے بعد ہم نے ان کو امن دے دیا، ایک اونگ آ گئی، یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ میدان جنگ میں اونگ کا آنا رحمت ہے اور نماز میں آنا شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو غم و دکھوں میں سلوا دے، یہ اس کے اچھے ایمان کی حالت کی دلیل بن جاتی ہے۔ لیکن اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جن کو اہمت ہم ہم کا شکار تھے، اپنی پڑی ہوئی تھی، ہائے ہم نہ مر جائیں۔ جب ہم آیا وہمی طبیعت ہوئی تو ساتھ یظنون باللہ غیر الحق، اللہ کے معاملے میں ناحق قسم کے گمان کرنے لگے۔ جاہلیت والے وہ کیا گمان تھے، لو یہاں لا کے ہمیں مار دیا انہوں نے، ہم نے کب کہا تھا ہمیں لے کے آئیں، خام خواہ ہمیں انہوں نے ادھر کر دیا ادھر کر دیا، اس قسم کی باتیں تھیں۔ کہنے لگے ہمارا تو جی کوئی اختیار ہی نہیں، حل لنا من الامر من شیئن، ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں، ہماری تو بات کی کوئی اہمیت نہیں، جب ماننا نہیں ہوتا تو پوچھتے کیوں ہیں، جب کہتے ہیں تو کوئی مانتا تو ہے نہیں۔ اس طرح کے نیگیٹو جملے منافقوں کے اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیے، جنہوں نے غزوہ احد کے میدان میں کافی اپنا رول ادا کیا اور مسلمانوں کے حوصلے توڑنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ معاملہ سارا اللہ ہی کا ہے، وہ چھپاتے ہیں اپنے نفسوں میں جو نہیں چھپا سکتے آپ سے، یعنی یہ کوشش بڑی کرتے ہیں اپنے نفاق کو چھپا لے لیکن چھپا نہیں سکتے۔ کہتے کیا لو کان لنا من الامر من شیئن، اچھا اگر ہماری بھی کوئی مرضی مان لیتا، اگر ہماری رائے پہ کوئی عمل کر لیتا تو ماں کو تل نہ ہونا، کوئی بنا یہاں مرتا، ان کی مرضی کیا تھی، گھروں میں بیٹھے رہو دبکے رہو، نہ کچھ کرو نہ کوئی مشکل پڑے گی۔ تو دیکھا خام خواہ میدان احد میں آ گئے ہم اور اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہمت توڑنے والے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں، قل آپ ان سے کہیے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو نکل پڑتے وہ لوگ جن کا لکھا گیا تھا کہ ان کو قتل ہونا ہے اپنی جگہوں کی طرف، یعنی موت تو بندے کی جگہ کو ڈھونڈ لیتی ہے، تو تم گھر میں بھی مرتے اور کسی اور عذر کے بہانے کو چیز دینے لینے کے لیے تم کیوں نہ میدان جنگ میں آ جاتے اور موت وہاں آتی، لیکن یہ سب کیوں ہوا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ تو آزمانا چاہتا تھا کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے اور خاص کرنا چاہتا تھا جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو، اور اللہ خوب جاننے والا ہے دل کی باتوں کو۔ ان کا معاملہ کیا تھا کہ یہ اپنے ہم میں اتنے مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے پول کھولنے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی شک کرتے تھے۔ غزوہ احد کی ایک اور بڑی اہم بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے نبی نے اس جنگ میں ان منافقوں کے پول کھولے جن کا گمان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بغض رکھتے ہیں، یقینہ رکھتے ہیں اور ان کو پیچھے پیچھے رکھتے ہیں اور ان کی کوئی بات نہیں مانتے۔ اب ذہن میں رکھیے کہ غزوہ احد بالکل ابتدائی دور میں تھی مدینہ کے، ابھی صحابہ کرام میں سے اکثریت جو مکہ سے آئے تھے وہ تو اعلیٰ درجوں پہ پہنچ چکے تھے، لیکن اس میں وہ لوگ شامل تھے جو مدینہ میں آنے کے بعد اسلام کی طرف آئے تھے لیکن ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی۔ जैसे हर नया पैदा होने वाला बच्चा अपने माँ बाप के बारे में भी बाज़ दफ़ा बदगुमान होता है, इनके भी दिल में अल्लाह के नबी के बारे में इतनी बदगुमानियाँ थी, तो अल्लाह ताला ने कहा, यही देखने के लिए तो तुम्हें मैदान उहद में लेके आए हैं कि भला तुम इन हालात में करते क्या हो। इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमान, बेशक वो लोग जो पलट गए उस दिन जब दो जमातें आपस में मिली, बेशक उनको तो बहकाया था शैतान ने उनके बास कामों की वजह से। इसको हाईलाइट कर लें, बड़ी अहम बात है कि बंदे के बास काम ऐसे होते हैं जिसकी वजह से शैतान बंदे पे सवार हो जाता है। बास हमारे काम ऐसे होते हैं जिसकी वजह से शैतान हमें हिदायत के रास्ते से बहकाता है, ये अल्लाह की तरफ से एक सज़ा होती है। बास हमारी गुमराहियाँ, नाफरमानियाँ हमारे किसी दूसरे गुनाह का नतीजा होती हैं। अल्लाह ताला कहते हैं फिर बाद में अल्लाह ने उनको माफ़ किया और वो बख्शने वाला और मेहरबान है। ऐ लोगों, जो ईमान लाए हो उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो काफिर हुए और अपने भाइयों से कहने लगे जब वो ज़मीन में चले या गाजी बने, कहने लगे लव कान इंदना मा मातू, अगर ये हमारे पास रहते तो ना मरते। आपको फील हो रहा है मुनाफिक को हसरत ही हसरत है, ये ना होता, काश ये ना करते, काश ये टिकट ना खरीदते, जहाज़ में ना बैठते। मोमिन अल्लाह के फ़ैसलों को बड़ी जुरत से कबूल करता है। जिस तरह वो फ़ायदे को कबूल कर लेता है ना, इस तरह वो नुकसान को भी रियलाइज़ कर, यस इट्स माई लॉस, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुनाफिक जो होता है वो नुकसान में और बेचैन हो जाता है, बार बार एक इनका जुमला सामने आ रहा है, काश ये ना जाते तो ना मारे जाते। वो मौत जिसको अल्लाह शहादत कहता है, ये उसको महरूमी कह रहे हैं। वो गाजी बन के आना जिसके ऊपर जन्नत की बशारतें थी, इन लोगों को वो अजाब लग रही थी, अल्लाह कह रहे हैं लिया जलोल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी कुलूबिहिम, अल्लाह इस बात को इनके दिलों की हसरत बना रहा है। और असल बात तो यह कि अल्लाह ही ज़िंदा करता और मारता और वो हर चीज़ को देखने वाला है जो अमल करते हैं। रह गई बात, तुम मर गए तो कोई बात नहीं, वाला इन कोतिल तुम फी सबीलिल्लाह, अगर तुम अल्लाह के रास्ते में मारे जाओगे या मर जाओगे तो क्या है, मग़फ़िरत मिन अल्लाह ही, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा, व रहमा और तुम्हें जन्नत देगा, और यह खैर मिम्मा यजमाउन, जो उससे बेहतर है जो वो जमा करते हैं। और अगर तुम मर गए या मारे गए तो आखिर तो अल्लाह ही की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। सारी बात जहाँ पूरी हुई कि इनकी बातों को छोड़ दीजिए, ये खामखा की बातें कर रहे हैं। मोमिन के लिए तो फतह शिकस्त सानवी चीज़ें होती हैं, असल चीज़ तो अल्लाह की रज़ा है। इसके बाद आयत नंबर 159 में अल्लाह के नबी सल्लम की वो खूबियाँ हैं जो एक अच्छे लीडर में होनी चाहिए। ग़ज़वे उहद में चूँकि आपके साथियों, आपकी टीम से बहुत बड़ी ख़ता हो गई थी, अक्सर लोगों से चूके हुई, तो बेचारे जो लोग अपनी जगह पे कायम थे उनकी भी कोशिशें अधूरी लगने लगीं, तो उम्मीद की जा सकती थी कि ग़ज़वे उहद के बाद नबी सल्लम उनसे बाज़पुरस करें, सख्ती का रवैया हो। तो अल्लाह ताला पहले ही नबी के गुस्से को ठंडा करते हुए कह रहे हैं फ़बीमा रहमत मिन अल्लाह लिन्ता लहुम, ये अल्लाह की रहमत है कि आप इनके लिए बड़े नरम हैं, आपका दिल इनके लिए नरम है, आप इनकी गलतियों पे माफ़ करने वाले हैं। हाँ, अगर आप सख्त होते या सख्त दिल या ज़ुबान के दिल के गंदे होते तो ये आपसे बिखर जाते, यानी आप इनके साथ इनकी गलतियों पे भी जब इनको टोकते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से टोकते हैं, वरना तो अगर आप बदतमीज़ी करते, गालियाँ देते, चीखों पुकार करते तो ये आपका साथ छोड़ चुके होते। अब इनसे जो गलती हुई है तो फाफ अनहुम, माफ़ कर दें इनको, वस्तग़फिर लहुम, बल्कि इनके लिए बख्शिश की दुआ करें, और आइंदा मत इनको काटें खुद से, वशाविर हम फिल उम्र। हम बड़ी डिटेल से इन आयतों पर बात कर चुके हैं कि कैसे अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से ये चीज़ सिखाते हैं कि किसी से गलती हो जाए तो उसको काटना नहीं, बल्कि उसको दोबारा नए सिरे से नई तरबियत के साथ उसको दोबारा उन चीज़ों में रखो और इनसे फिर मशवरा लो, और जब इरादा कर लें, अज़म कर लें किसी काम के करने का, तो फतवक्कल अल्लाह, फिर अल्लाह पे तवक्कुल कीजिए। यहाँ से इस्तखारा करने का तरीका भी पता चलता है, साइड इशू है लेकिन बात समझ आती है। आपकी ज़िंदगी में कोई भी मामला आया हो, शादी करूँ ना करूँ, वहाँ घर लूँ ना लूँ, पहले शाविर हम फिल अम्र आप कीजिए। सबसे पहले आप लोगों से मशवरा लीजिए, पूछिए क्या चाहिए, क्या करना है, पहले ले लें लोगों से राय। उसके बाद फैज़ा अज़म था, अज़म के अंदर अल्लाह से मशवरा है, फिर इस्तखारे की दुआ कर लें, इस्तखारा करें, अल्लाह से खैर मांगे, फिर दिल जो कहे फतवक्कल अल्लाह, फिर वो काम कर लीजिए। और अल्लाह से तवक्कुल करने वाले को पसंद करते हैं। और अगर तुम यंसुरकुमुल्लाह, अगर मदद करे तुम्हारी अल्लाह तो तुम पर कोई गालिब नहीं। कौन सी दुनिया की ताकत है जो तुम्हें अल्लाह के अजाबों से रोके या अल्लाह की मदद से रोके? असल बात है कि अल्लाह का बंदे के साथ होना लाजिम है, और अगर वो तुमको रुस्वा कर दे तो कौन है जो तुमको उसके बाद मदद दे? और अल्लाह ही पर चाहिए कि तवक्कुल करें ईमान वाले। غزوہ احد میں کے بعد دیکھا تو ایک چادر نہیں مل رہی تھی. بدر یا احد دونوں میں سے کسی ایک موقع کا یہ واقعہ ہے. لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اللہ کے نبی نے لے لی ہوگی. کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی پر یہ الزام تک لگا دیا کہ آپ نے مال غنیمت کی بانٹ فیئر نہیں کی. آپ فیوریٹزم کرتے ہیں. تو کہا وما کان لنبی ان یغل, کا نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے. نبی نے خیانت کرنی ہے تو تمہیں کیسے ایمان کا سبق دے گا, کیونکہ جو کوئی خیانت کرے گا تو قیامت کے دن اپنی خیانت کے ساتھ آئے گا, اور پھر ہر نفس کو پورے کا پورا دیا جائے گا جو کہ اس نے کمایا تھا, اور اس پہ کوئی ظلم نہ کیا جائے گا. کیا پس جو اللہ کی رضا کی تباہ کرے اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کا غضب اور غصہ لے کر آئے؟ دو مختلف کردار ہیں, دو مختلف انجام ہیں. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ہے وہ ٹھکانہ. ہاں جو اللہ کی رضوان اللہ کی رضا مندی کے لیے کام کریں تو ہم درجات عند اللہ, ان کے درجے اللہ کے پاس ہیں. اور واللہ بصیر بما یعملون, اللہ خوب جانتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. اور آخری آیت اس حصے کی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ان کے بیچ میں رسول بھیجا انہی کے ہم نفسوں میں سے جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا, ان کا تزکیہ کرتا, اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اگرچہ وہ اس سے پہلے بہت دور کی گمراہی میں بھٹک رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دیں لیکن کسی کا احسان نہیں جتلایا. ایک نعمت جس کو اللہ نے من کہہ کر امت مسلمہ کے لیے رکھا, اور وہ کیا ہے کہ آپ کے لیے اتنا پیارا رسول, اتنا پیارا استاد, اتنا پیارا لیڈر رکھا کہ جو آپ کی تربیت اور تزکیہ اور تعلیم کا انتظام کرتا تھا. اور تم پہلے تھے کیا؟ سوچو, بات بات پہ جھگڑے, کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا, کہیں گھوڑے آگے بڑھانے پہ جھگڑے. تو آج ہم سب بھی خود سے پوچھیں کہ کیا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایک نعمت لگتا ہے؟ اور اگر وہ نعمت ہے تو نعمت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. تلاوت سنیں گے.
یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.
آیت نمبر 165. اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا, اور جب کبھی پہنچی تم کو کوئی مصیبت تو تم تو اس سے دگنی پہنچا چکے تھے, پھر تم نے کہا یہ کہاں سے آ گئی؟ کہہ دیجئے کہ یہ تو تمہارے اپنے ہی نفسوں کی طرف سے ہے, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. غزوہ احد ہی کے تناظر میں یہ آیات نازل ہوئیں. جب مسلمانوں میں بھگدڑ مچی, 70 صحابہ کرام شہید ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں تسلیاں دیں کہ تمہیں لگا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم نبی کے ساتھی ہیں تو ہم ہی جیتیں گے. تو تم سوچو تو صحیح کہ غزوہ بدر میں تو تم 70 کو مار کر 70 کو قیدی بھی بنا چکے تھے, تو جب وہاں ان کو تکلیف پہنچی تھی تو آج اگر تمہیں تھوڑی پہنچ گئی تو یہ نہ سوچو کہ ہم پہ یہ کیوں آئی اور اس میں کسی اور کا کیا قصور ہے. یہ دیکھو کہ تم نے کیا غلطی کی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جیتی ہوئی جنگ تمہارے ہاتھوں سے نکال دی, اور وہ غلطی رسول کی اطاعت سے روگردانی تھی اور مال کی محبت تھی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے تسلی دیتے ہیں, اور جو کچھ تم کو پہنچا اس دن جب کہ دو جماعتیں ملی تھیں تو وہ اللہ کے حکم سے تھا, تاکہ وہ جان لے ایمان والوں کو اور تاکہ وہ جان لے منافقوں کو, اور کہا گیا ان کو کہ آؤ لڑو اللہ کے راستے میں یا دفاع کرو. کہنے لگے اگر ہمیں لڑنا آتا تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلتے. اصل بات کیا تھی کہ اس دن وہ کفر کے ساتھ ایمان کی نسبت زیادہ قریب تھے. یہ منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں, اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں. یہ اور اس سے اگلی چند آیات منافقین کی ہیں. جنگوں کا ایک بہت بنیادی مقصد یہاں بتا دیا کہ لیعلم الذین نافقوا, کہ مومن اور منافق کا فرق پتہ چل جائے. عام حالات میں دوست اور دشمن کا فرق نہیں پتہ چلتا, لیکن جب انسان کی زندگی میں کوئی مشکل وقت آتا ہے تو سب چھٹنے لگتے ہیں. دولت آتی ہے, حالات اچھے ہوتے ہیں, تو بہت سارے بھی چائے پانی پینے کے لیے آپ کے قریب جمع ہونے لگتے ہیں, لیکن اصل وہ دوست ہوتا ہے جو آپ کو مشکلات میں بھی ساتھ نہ چھوڑے. دین کے ساتھ بھی بعض لوگوں کا رویہ بہت ہی دوستی والا ہوتا ہے, لیکن جو ہی ان کو دین پہ آنے کی وجہ سے کوئی مشکل آئے या दीन पर कोई एक अनयूजल किस्म के हालात आ जाएं तो मुनाफिक ऐसे वक्तों में अपने आप को पीछे करने लगता है। अल्लाह ताला ने जंगों का ये मकसद बता के मुनाफिकों को खूब अच्छी तरह बता दिया कि देखो तुम्हारी बातों से अल्लाह गाफिल नहीं। अल्लज़ीना क़ालू लिख़्वानिहिम, और वो लोग जिन्होंने अपने भाइयों से कहा और ख़ुद बैठ रहे, यानी घर बैठ के तबसरे करने बड़े आसान लगते हैं, कमेंट्री करना तबसरे करना आसान होता है। और क्या जुमले थे इनके, लौ अताउना मा क़ुतिलू, अगर ये हमारी बात मान लेते तो ना मारे जाते, ना लड़ाई होती, ना इनकी जान जाती। यानी मैदान जंग में जाके तो कोई बहादुरी का जौहर दिखा नहीं सकते थे, लेकिन घर बैठ के तबसरे बहुत करते थे। कह दीजिए कि फिर हटाओ अपने नफ्सों से मौत को अगर तुम सच्चे हो। यानी अगर तुम्हारा ख्याल है कि मौत मैदान जंग में जाने से आती है, तो फिर आप घर में बैठे हुए ना मरोगे कभी, और अगर मौत आए तो फिर उसको हटाओ, क्योंकि हम तो घर में बैठे हैं। बाकी रह गई बात कि अगर जंगों में कुछ लोग मारे जाते हैं तो क्या वो नुकसान पाते हैं? नहीं। वला तख्सबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, और ना गुमान करें वो उन लोगों के बारे में जो अल्लाह के रास्ते में मारे गए कि वो मुर्दा हैं, बल्कि वो ज़िंदा हैं अपने रब के पास और रिस्क पाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं उसकी जो अल्लाह ने उनको अपने फ़जल से दिया, और खुशखबरियाँ पाते हैं उन लोगों की जो अभी तक उनको नहीं मिले जो उनके पीछे हैं, कि नहीं कोई खौफ उन पर और ना वो गमज़दा होंगे, और खुशियाँ पाते हैं अल्लाह की नेमतों की और उसके फ़जल की। और असल बात यह कि अल्लाह ज़ाया नहीं करता अजर मोमिनों का। शुहदा के यहाँ वसफ बताए गए कि इस दुनिया के नाते से तो वो मर जाते हैं, लेकिन अल्लाह के हाँ वो ज़िंदा हैं, ना कब्र का हिसाब होता है शहीद पे, ना अज़ाब कब्र उस पर आता है। बाद में जो लोगों ने उसके पास मरने के बाद पहुँचना है उनकी खुशखबरियाँ भी उनको मिलती हैं, तो क्या ये नुकसान में पड़े? मौत तो आनी ही थी, वो मौत कितनी खुशकिस्मत है कि जिस मौत को अल्लाह ताला ज़िंदगी कह दे। दुआ किया करें अपने लिए भी और अपने प्यारों के लिए भी कि अल्लाह हमें अपने रास्तों में मारना। इस तमन्ना के साथ अगर बिस्तर पे भी मर जाएंगे तो इंशाल्लाह शहादत का सवाब होगा, लेकिन शर्त क्या है कि ये तमन्ना सच्ची हो। हदीस में आते जो इल्म के रास्ते में मारा गया वो शहीद है, जो बीमारी से मारा गया पेट की बीमारी से वो शहीद है, हत्ता कि जिस बंदे के दिल में ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद हूँ, वो घर में भी मरेगा तो भी अल्लाह ताला उसको शहादत का अजर देगा। इसके बाद आयत नंबर 172 से लेकर आयत नंबर 175 तक एक ख़ास वाक़े का तذکرہ है, जिसमें मुसलमान अभी एक जंग से पलट के वापस आए थे ग़ज़वे उहद के बाद, ज़ख्मों से चूर चूर थे, घर घर में लाशें थीं, इतनी तकलीफ़ इतना ट्रॉमा उनके ऊपर गुजर चुका था, लेकिन फ़रिश्तों ने हथियार ना भी छोड़े थे। अल्लाह के नबी के ज़रिए से एक दूसरी जगह जाने का हुक्म हो गया। सहाबे कराम इस बात पर क्या कहने वाले बने? अल्लज़ी नस्तजाबु लिल्लाहि वर रसूलि मिन बादि मा असाबहुमुल क़र, वो लोग जिन्होंने कबूल किया अल्लाह और उसके रसूल की बात को इसके बाद कि उनको ज़ख्म पहुँच चुके थे, जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनके लिए बदला है अच्छा, और जो तकवा अख्तियार करें उनके लिए अजर अजीम है। ये वो लोग हैं जब इनसे कुछ लोगों ने कहा कि बेशक लोग जमा हो गए हैं तुम्हारे खिलाफ, बस तुम उनसे डरो, लेकिन इस बात ने उनकी हिम्मत तोड़ने की बजाय जो नईम के नाते से उन्होंने सुनी कि अबू सुफियान एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर आ गया, तो खौफ ज़दा होने, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने, कोई एड मांगने की बजाय उन्होंने इस मामले को कैसे टैकल किया? फ़ज़ादहुम ईमाना, ईमान और बढ़ गया। मुश्किलात में मोमिन का ईमान और बढ़ जाता है। जब दीन पर कोई कड़ा वक्त आएगा मोमिन इस तरह से उठ के भागता है ईमान की तरफ कि जैसे ईमान उसकी सबसे बड़ी मता हो, और ज़ुबान पे उनके जुमला क्या था कि हसबुनल्लाहु व नियमल वकील, हमको काफ़ी है अल्लाह और वो खूब कारसास है। फ़ायदा क्या हुआ इसका? फ़न क़लबु बिनियमत मिन अल्लाह, वो अल्लाह की तरफ से नेमत के साथ पलटे और फ़जल के साथ, कि ना लगी उनको कोई बुराई और अल्लाह की रज़ा की पैरवी उन्होंने की, और अल्लाह साहिब फ़जल और अज़ीम है, यानी ना तो कोई जंग लगी बल्कि वहाँ से माल गनीमत भी मिल गया, दुश्मन पे धाक भी बैठी, और कुछ ना करके बहुत कुछ करने का अजर मिल गया। और बाकी रह गई बात जिन्होंने ये अफवाह फैलाई थी कि अबू सुफियान बहुत बड़ा लश्कर लेकर आए, तो ये तो असल में इन्नमज़ालिकुमुश्शैतानु, ये तो बेशक शैतान था जो डराता है अपने दोस्तों से, बस तुम ना उनसे डरो मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो। क्या पता चला कि जब ज़िंदगी में इस्लाम के ऊपर एक पे एक और चोट पड़ जाए, अभी एक कमर सीधी नहीं हुई कि फिर दोबारा उठने की कोशिश करने लगे इंसान, तो ऐसे वक्तों में बहुत थोड़े लोग होते हैं जो कायम रह जाते हैं, लेकिन ऐसे कायम रहने वालों को अल्लाह ताला अपनी रज़ामंदी की खुशखबरियाँ देता है। इसके बाद नबी सल्लम के इर्द गिर्द जो लोग यहूद और मुनाफिकीन किस्म के जमा थे उनकी सरगर्मियाँ, जो वो चाहते थे कि इस्लाम ना फैले, तो अल्लाह के नबी के इर्द गिर्द का जो माहौल था उसको वाज़ किया गया अगली चंद आयात में। वला यहज़ुनकल्लज़ीन युसारिऊन फिल कुफ्र, और ना गमज़दा करें आपको वो लोग जो कुफर की तरफ दौड़ धूप करते हैं, यानी जिनकी सारी दौड़ धूप कुफर को प्रमोट करने की है। ये हरगिज़ नहीं अल्लाह का कोई नुकसान करेंगे। अल्लाह तो ये इरादा करता है कि उनका आखरत में कोई हिस्सा ना हो और उनके लिए बड़ा अजाब हो। यानी इनकी कोशिशें, इनके बड़े बड़े इस्लाम के ख़िलाफ़ प्लान जो हैं, इससे आप बिल्कुल गमज़दा ना हो, अल्लाह ताला आपको नुकसान नहीं देगा। हाँ, जो लोग ईमान के बदले कुफर को ख़रीद लें तो वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे और उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है। और ना गुमान करें वो लोग जिन्होंने कुफर किया क्या कि हम पे तो कोई पकड़ नहीं होती, बर गिरती है बेचारे मुसलमानों पे। अल्लाह ताला कहते हैं जिनको दुनिया की दौलत, दुनिया का माल दिया गया है, इनको हर दिन दुनिया की तरक्कियाँ मिल रही हैं, तो असल में अन्नमा नुमली लहुम, कि ये मोहलत दी है हमने उनको, खैर लि अनफुसिम, यानी काफिर इस मोहलत को अपने हक में खैर ना समझें, बल्कि हम मोहलत देते हैं उनको ताकि ज़्यादा हो जाएँ वो गुनाहों में, और रुस्वा कुन अज़ाब उनके लिए तैयार है। यानी अल्लाह का इनको फौरी ना पकड़ना असल में अल्लाह ताला की तरफ से इनके लिए अजाबों की लिस्ट को लंबा करने का एक ज़रिया है। बाकी रह गए सच्चे मोमिन, तो माँ कान अल्लाह लियज़रुल मोमिनीन, अल्लाह ऐसा नहीं है कि मोमिनों को उनके हाल पर छोड़ दे, यहाँ तक कि खबीस और तैयब का फ़र्क ना पता चले, और ना ही अल्लाह ऐसा है कि इत्तले कर दे तुमको गैब पर। और लेकिन अल्लाह तो चुनता है अपने रसूलों में से जिसको चाहता है, बस ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूलों पे, और अगर तुम ईमान लाओ और तकवा अख्तियार करो तो तुम्हारे लिए अजर अजीम है। क्या पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की मदद की जाएगी। अल्लाह ताला बीच में नहीं मामला छोड़ता, हक को हक करके बातिल को बातिल करता है, लेकिन इसके लिए थोड़े से सब्र और इंतज़ार की ज़रूरत होती है। इसके बाद यहूद, जिनका बुखल मारूफ है, जो दौलत और सोने की मोहब्बत में चूर हैं, उनके बारे में चंद बातें। और ना गुमान करें वो लोग के जो बुखल करते हैं, साथ इसके जो दिया उनको अल्लाह ने अपने फ़जल से कि वो बेहतर है उनके लिए, नहीं बल्कि वो बुरा है उनके लिए, और अन करीब वो तौक पहनाए जाएंगे उसके जो बुखल किया उन्होंने उसका क़्यामत के दिन। और अल्लाह के लिए है ज़मीन व आसमान की मीरास, और अल्लाह ताला हर उस चीज़ को जो तुम अमल करते हो खूब देखने वाला है। इसके बाद यहूद का वो जुमला जो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की थी कि मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाहु कर्दन हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसन दे। एक तो वह अबू दहदा जैसे सहाबी थे जो लब्बई कहते हुए घर का सामान ले आए, लेकिन यहूद में से एक यहूदी फनहास था, उसने जुमला बोला कि इन्नल्लाह फ़कीरों व नहनु अग्निया, अल्लाह ने बेशक सुन ली बात उन लोगों की जो ये कहते हैं कि नौसु बिल्ला अल्लाह फ़कीर हो गया और हम बड़े दौलत वाले, अनकरीब हम लिख लेंगे जो उन्होंने कहा, और साथ ही साथ इनका दूसरा जुर्म भी लिखेंगे, और वो क्या कि अम्बिया को नाहक कत्ल करना, और हम उनको कहेंगे कि चखो जलने का मज़ा। ये सब क्यों है? उसकी वजह से जो कि तुमने अपने हाथों से आगे भेजा, और अल्लाह अपने बंदों में से किसी पर जुल्म नहीं करता। क्या पता चला कि जब दिल में बुखल होता है तो दीन का हर हुक्म अपने ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा बोझ लगता है इंसान को। यहूद के दिल में ये बुग़्ज़ था, तो उनको अल्लाह के रास्ते में मदद के मौक़े, नेकियां और अजर समेटने की बातें तावान और बोझ लगीं, और उन्होंने नौसु बिल्ला अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ ऐसी बातें कह दी। अल्लाह ताला कहता है कि मुझे इनकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, मैं तो सिर्फ़ इनको देख रहा था कि ये अपने आप को इस्लाम के साथ मोहब्बत में कितना सच्चा साबित करवाते हैं। इसके बाद आयत नंबर 183 में यहूद ही का एक और इल्ज़ाम था, क्या अल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह अहद इलैना, बेशक वो लोग जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह ने हमसे यहद लिया है कि हम किसी रसूल पर ईमान न लाएं यहाँ तक कि कुर्बानी आए और आग उसको खा जाए, यानी जब तक किसी रसूल के कुर्बानी किए हुए जानवर को आग ना खा लें उस रसूल को ना मानो। तो चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो ऐसा कोई मौजज़ा नहीं, लिहाजा में इनको नहीं मानते। तो अल्लाह ताला कहते हैं अच्छा ठीक है, इनको तो इसलिए नहीं मानते ना कि इनके पास जो मौजज़ा नहीं, तो ये तो बताओ कुल कद जाकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली बिल बय्यिनाति, कि बेशक तुम्हारे पास मेरे से पहले और रसूल भी तो आए थे उन दलाइल और उन चीज़ों को लेकर जिसका तुमने दावा किया, यही कि कुर्बानी खाए आग को, आग खा ले कुर्बानी को, तो फिर तुमने क्यों कत्ल किया उनको अगर सच्चे हो, यानी उनको फिर क्यों तुमने कत्ल कर दिया जो ये मौजज़ा लेकर आए। फ़ैन कज़्ज़बू का, फिर अगर ये तुझको छुटला दें तो कोई बात नहीं, आपसे पहले रसूल भी छुटलाए गए जो कि रोशन दलीलें और ज़ुबर और किताब मुनीर लेकर आए थे। असल बात यह कि रसूलों को छुटलाने का अमल क्या बताता है कि लोगों को अपनी मौत याद नहीं है, इसलिए इनको याद दिला दो कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स चखने वाली है मौत का जायका, फिर तुम पूरे पूरे दिए जाओगे अपने अजर क़यामत के दिन। बस जो कोई बचा लिया गया आग से और दाखिल कर दिया गया जन्नत में तो वो कामयाब हुआ, और नहीं है दुनिया की ज़िंदगी मगर एक फ़ायदा धोखे का। अलबत्ता ज़रूर तुम आजमाए जाओगे अपने मालों और अपनी जानों के मामले में, और अलबत्ता तुम ज़रूर सुनोगे उन लोगों से जो किताब दिए गए तुमसे पहले और मुशरिकों से तकलीफ़ देने वाली बातें। क्या करो फिर इन प्रोपेगंडों और इन गलत कमेंट्स के जवाब में? व इन तस्बिरू व तत्तकू, सब्र और तकवा इख्तियार करो तो ये है तो बड़ी हिम्मत के कामों में से। क्या बताया कि इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करने वालों का जवाब कोई अग्रेसिव होना या उनके जवाब को ईंट का जवाब पत्थर से देना नहीं बल्कि सब्र। सब्र क्या है? दीन पे बंधो, पहले अपने दीन पे अमल करो, नमाज़ रोज़ा हज ज़कात तो पूरी करो, और तत्तकू अमली ज़िंदगी में तकवा लेकर आओ, क्योंकि गैरों की बातें इंसान को तभी नुकसान देती हैं जब सब्र और तकवा की कमी होती है। जब तक मुसलमान अपने दीन पर कारबंद रहते हैं, अमल करते हैं, दुश्मनों को जुरत नहीं मिलती कि उनको कोई बात कर सके। इसके बाद वो आयत है कि जिसको बुनियाद बनाकर यहूद को कई मौक़े पे पूछा गया, क्या वही ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब, और जब लिया अल्लाह ने पुख्ता वादा अहले किताब से कि अलबत्ता ज़रूर तुम इसको ज़ाहिर करोगे लोगों पर और इसको छुपाओगे नहीं, किसको? नबी सल्लम की आमद को, और इस सच्चे दीन की बातें इनकी किताबों में लिखी हुई थी। इसके बावजूद भी इन्होंने इन सारी चीज़ों को छुटला दिया, नबी सल्लम की आमद को छुपा दिया। फ़नबज़ूहु वरा ज़ुहूरिहिम, बस उन्होंने इसको अपनी पुश्तों के पीछे डाल दिया, और वो इसके बदले में थोड़ा माल ख़रीदते हैं, बस बहुत बुरा है जो उन्होंने ख़रीदा। क्या पता चला कि अल्लाह के नबी की आमद की खबर हो या सच्चे दीन को छुपाने की बात हो, क़यामत के दिन ऐसे तमाम लोगों को अपने नुकसान का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने उस वक़्त क्या नुकसान किया। इसके बाद यहूद और इसी तरह के लोग जिनके दिल में सच्चा ईमान नहीं होता, उनकी ख्वाहिश है कि हम करें कुछ ना, तारीफ़ हमारी बहुत हो, जो करें ना बस उन्हीं के लोग गुनगाएँ। तो अल्लाह ताला कहते हैं, ला तख्सबन्नल्लज़ीना यफ़रहूना, ना गुमान करें वो लोग जो यफ़रहून बिमा अतौ, जो खुशियाँ मनाते हैं उस चीज़ के साथ जो वो दिए गए, और वह हिब्बून यहमदु बिमा लम यफ़लु, और पसंद ये करते हैं कि उस चीज़ पर भी उनकी तारीफ़ की जाए जो उन्होंने नहीं की। तो फ़ला तख्सबन्नहुम बिमफ़ाज़ति मिन अल-अज़ाब, मत गुमान करो इनका छुटकारा पाना अज़ाब से, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये तारीफ़ें करने के लिए काम करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं करते। अल्लाह को तो इनके किसी कामों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, अल्लाह के लिए आसमान और ज़मीन की बादशाहत है, और वह हर चीज़ पर क़ादिर है। इसके बाद आयत नंबर 190 से 200 तक आखिरी 10 आयात, जो सूरह आले इमरान का आखिरी रुकू है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए जब उठते तो बग़ैर वज़ू किए अपने बिस्तर पे ही बैठे बैठे ये आयात पढ़ते थे। इन आयात में साइंस और रूहानी इल्म दोनों को जमा कर दिया गया। इन आयात में हम देखेंगे कि बंदा मोमिन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तरफ वो अपनी रूहानियत, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बुलंद करता है अल्लाह के कलाम के ज़रिए से, इबादत के ज़रिए से। दूसरी तरफ वो कायनात पे गौर व फिक्र करता है, तदब्बुर करता है, साइंस को सीखता है, अल्लाह की इस कायनात को, अल्लाह के इन कारनामों को देख कर दुनिया में भी आगे बढ़ता है। और ये खूबसूरत इम्तिज़ाज जब मुसलमानों का होता है तो मुसलमान लीडर्स बन जाते हैं, और जब मुसलमान दुनियावी मैदान में पीछे रहते हैं तो वो दीन के भी काम के नहीं रहते। इन नफ़ी खल्क़ समावाती वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, बेशक आसमान और ज़मीन और रात और दिन के आने जाने में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। कौन होते हैं अक्लमंद? अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन, वो लोग जो याद करते हैं अल्लाह को खड़े हुए, बैठे हुए और अपनी करवटों पे, और तफक्कुर करते हैं आसमान और ज़मीन की तख्लीक में, और तफक्कुर के बाद जो बात उनकी ज़ुबान पे आती है, रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, ए अल्लाह तूने ये कायनात बेमकसद नहीं बनाई, पाक है तू, पस हम को आग के अज़ाब से बचा, बेशक तू जिसको आग में दाखिल करेगा उसको तूने रुसवा कर दिया, और ज़ालिमों के लिए कोई मददगार नहीं। ए हमारे रब, बेशक हमने सुना एक पुकारने वाला पुकारता था ईमान की तरफ, क्या ओ ईमान लो अपने रब पर, पस हम ईमान ले आए, बस बख्श दे हमारे गुनाहों को, दूर कर दे हमारी बुराइयां हमसे, और हमें नेक लोगों के अब्रार के साथ फौत करना। ए हमारे रब, तू दे हमको जिसका वादा किया तूने अपने रसूलों की ज़ुबान से, और ना हमको रुसवा करना क़यामत के दिन, बेशक तू वादों के ख़िलाफ़ नहीं करता। बंदे मोमिन के दिल से ये दुआएं कब निकलती हैं? जब वो अल्लाह की मार्फत को पा लेता है। यही गौर व फिक्र जब साइंसदान करते हैं कुफर के साथ, तो वो कायनात के राज पाते हैं, वो कायनात को डिस्कवर करते हैं, लेकिन खालिके कायनात तक नहीं पहुंचते। इस्लाम कहता है कि इस कायनात पे गौर करो तो मालिके कायनात तक पहुंचो। यही गौर व फिक्र होता है। साइंस रुक जाती है मादे पे, लेकिन साइंस के बाद अल्लाह की ज़ात तक पहुँचाने वाली चीज़, यही गौर व फिक्र है जो इस्लाम लाने के बाद गौर व फिक्र करता है। सहरियों के वक्त मांगी भी ये खूबसूरत दुआएं, अल्लाह इनके साथ क्या करता है? फस्तजाब अलहुम रब्बुहुम अन्नी ला उदी अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन अव उनसा। बस कबूल की उनके रब ने उनके लिए और कह दिया कि नहीं वो ज़ाया करता अमल किसी अमल करने वाले का, चाहे वो मर्द हो या औरत, और बाज़ तुम में से बाज़ ही से हैं, अमलों के अतबार से सब एक जैसे हो। हाँ मगर जो लोग हिजरत करें और अपने घरों से निकाल दिए जाएं और तकलीफ़ दिए जाएं मेरे रास्ते में, और लड़ाई किए जाएं और मारे जाएं, तो अनकरी अलबत्ता मैं ज़रूर दूर कर दूंगा उनकी बुराइयां, और उनको दाखिल करूंगा उन जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और सवाब मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से सवाब है, वल्लाहु इंदहु हुस्नु सवाब, और अल्लाह ही के पास है बेहतरीन सवाब, बेहतरीन अजर अल्लाह ही दे सकता है। दुनिया में कोई अमल करेगा उसका अजर कितना को पालेगा, लेकिन जब अल्लाह उसको देगा तो उसकी कोई इंतहा नहीं। उसके बाद अमूमन कुफार को अच्छे हाल हुलिये में देखकर दिल में ख्याल आने लगे अगर किसी के, कि अल्लाह इनसे राज़ी है तभी तो इनको इतना कुछ दिया, तो उस गलत फहमी का इजाला, ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल्लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद, न धोखे में डाले आपको काफ़रों का चलना फिरना शहरों में, मताउन क़लील, ये थोड़ा सा फ़ायदा है, फिर ठिकाना है इनका जहन्नुम, और बहुत बुरा है वो बिछोना, यानी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रातें, क्या इनको मिला? ये दुनिया तो मताउन क़लील, थोड़ा सा फ़ायदा है, फिर उनका जहन्नुम है ठिकाना। इसके बरक्स लाकिन अल्लज़ीना तक़व रब्बहुम, जो लोग तकवा के साथ जिए, अपने रब का खौफ लेके जिए, उनके लिए वो जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, हमेशा रहने वाले हैं उसमें, और नुज़ुलम मिन इंदिल्लाह, मेहमानी है अल्लाह की तरफ से, और जो अल्लाह के पास है वो बेहतर है अबरार के लिए, नेकोकारों के लिए। इसके बरक्स वाइन नमिन अहलिल किताब लमन युमिनु बिल्लाह, बेशक अहले किताब में से जो कि अल्लाह पर ईमान लाए, और जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ और जो नाजिल किया गया उनकी तरफ, और ख़ाशे हैं यानी डरने वाले हैं अल्लाह से, और अल्लाह की आयतों की थोड़ी कीमत नहीं ख़रीदते, यानी मुराद जय के सच्चे मुखलिस अहले किताब, वो भी अल्लाह के यहाँ आला मुकामात पे हैं। वलाइक लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब, बेशक उनका अजर अल्लाह के पास है, और अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। आखिरी आयत में पूरी सूरत का खुलासा है। ईमान वालों को 4 काम करने का हुक्म दिया अगर फला पाना चाहते हो। क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। पहली चीज़ इस्बिरू, सब्र करो, ज़ाती ज़िंदगी का सब्र, अपने दीन पे अमल करने का सब्र, नमाज पढ़ने का सब्र, रोज़े का सब्र, दुखों बीमारियों परेशानियों का सब्र। दूसरी चीज़ साबिरू, मुसाबरा, दूसरों के मुकाबले पे सब्र करो, इंसानी मामलात में सब्र करो, दुश्मनों की बातों पे सब्र करो, एक दूसरे को थामे रखो। तीसरी चीज़ राबितू, रिबात। रिबात क्या है? अल्लाह के रास्ते में जागना और अल्लाह के दीन को प्रमोट करने के लिए इंसान का अपने आप को खपा देना। सरहदों की हिफाजत है, वो दीन की हो या ज़हनी सरहदों की हिफाजत है, उम्मत मुस्लिमा को बेदार रहने का पैगाम दिया, और एक दूसरे से रबते रखो, कटे हुए ना रहो। और चौथी चीज़ वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। जब उम्मत मुस्लिमा ये काम करती है तो लअल्लकुम तुफ्लिहून का वादा पूरा होता है। तो यहाँ पर सूरत पूरी होती है। कुरान पाक की दूसरी तवील सूरह हमने पूरी की। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इसके अंदर जितनी अमल की बातें हैं वो सब हम अपनी ज़िंदगी में ला सकें, और इस खुलासे से हमारे जहन की खिड़कियां खुलें, और हम कुरान का एक इस तरह का एंगल देखें कि जो वाकई हमें बातें करने वाला लगे, इस तरह से हम कुरान को समझ सकें कि बग़ैर किसी दूसरे सहारे के हम इस किताब को समझ सकें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक।